लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे रोगियों की प्रेरिताई हेतु प्रार्थना करते हैं। हमारी याचना है कि रोगियों को अंतमलन देने वाला संस्कार उनके लिए, उनके परिवारों के प्रिय लोगों के लिए तथा सबके लिए ईश्वर की शक्ति, करुणा और आशा का एक दृश्यमान संकेत बन जाए। आमीन। नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। पुत्र, प्रभु और राजा पर श्रद्धा रखो और विद्रोहियों की संगति मत करो, क्योंकि विनाश उन पर अचानक आ पड़ेगा। कौन जानता है कि वे कौन सी विपत्ति ढा सकते हैं। श्रोताओ, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 24वें अध्याय के 21वें और 22वें पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम में हमने इन्हीं पदों की व्याख्या की थी। इन पदों में सूक्ति ग्रंथ का लेखक एक पिता स्वरूप अपनी संतान को प्रभु और राजा के अधीन रहने तथा उन पर श्रद्धा रखने का परामर्श देता है। इस तथ्य की ओर हमने श्रोताओं का ध्यान आकर्षित कराया था कि धर्म और निष्ठा को साथ साथ चलना चाहिए। मनुष्य होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने सृष्टिकर्ता का सम्मान करें, उन्हीं की आराधना अर्चना करें, उनका भय हम पर हमेशा बना रहे। पारस्परिक लाभ के लिए संगठित मानवीय समुदाय के सदस्यों रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम उस सरकार, उस प्राधिकारी या मालिक के प्रति वफादार और कर्तव्य निष्ठ रहें जिसे ईश्वर ने हमारे ऊपर स्थापित किया है। जैसा कि रोमियो को प्रेषित पत्र के 13वें अध्याय के पहले पद में संत पॉल कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि ऐसा कोई अधिकार नहीं जो ईश्वर का दिया हुआ न हो। वर्तमान अधिकारियों की व्यवस्था ईश्वर द्वारा की गई है, इसलिए जो अधिकारियों का विरोध करता है वह दंड आज्ञा अपने सिर पर लेता है। वस्तुतः श्रोताओ, धर्म परायण और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखने वाले हर बात में सत्यनिष्ठ होते हैं। वे अपने देश में शांतिपूर्वक जीवन बिताते तथा लड़ाई, झगड़े और क्लेश आदि से दूर रहते हैं। यही कारण है कि प्रभु और राजा पर श्रद्धा रखना तथा विद्रोहियों की संगति न करना ही हमारे लिए हितकर है, क्योंकि विनाश उन पर अचानक आ पड़ेगा। ईश्वर पर श्रद्धा और वयस्क या फिर शासक की अधीनता हमें फिजूल की प्रतिस्पर्धा से बचाएगी। हम अकारण झगड़ों में शामिल नहीं होंगे, बल्कि विवेक और सूझबूझ के साथ झगड़े को निपटाने की बात सोचेंगे और उस विनाश या उस विपत्ति को आने ही न देंगे जो प्रज्ञाहीन व्यक्ति पर कभी भी आ सकती है। श्रोताओ, विनाश या विपत्ति अचानक ही आ जाते हैं और हम मनुष्य परेशान हो जाते हैं। जीवन निरंतर चलते रहने का नाम है। हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ते जाना चाहिए, समय के साथ चलना चाहिए, जमाने के साथ चलना चाहिए। हमारी बेहतरी के लिए यही उचित है कि हम बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहें, अन्यथा हम भी उस कूढ़े की तरह या फिर उस जमे हुए पानी की तरह हो जाएंगे जिस पर मच्छर मंडराया करते हैं और कई बीमारियों को अपने संग ले आते हैं। अस्तु श्रोताओ, यही उचित है कि हम जीवन की मौजूदा स्थिति से खुश रहें, उसमें संतोष करें, नई स्थितियों का सामना करें, उनसे चिड़े नहीं बल्कि नई स्थिति में खुद को ढालने का प्रयास करें। विद्रोहियों की संगति में न रहें, उनके साथ किसी विवाद में न उलझें और न ही उनकी किसी साजिश में शामिल होवें। क्योंकि ऐसे लोग आम तौर पर अपने सिर पर मुसीबतों को लाते हैं, उनकी विपत्ति अचानक आ जाती है। यद्यपि वे अपने मंसूबों को अत्यंत गोपनीयता के साथ अंजाम देते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ लिया जाता है, उन्हें दंडित किया जाता है। लेखक इसीलिए कहता है, कौन जानता है कि वे कौन सी विपत्ति ढा सकते हैं। तिमोथी को प्रेषित दूसरे पत्र के चौथे अध्याय के चौथे पद में संत पॉल अधर्मियों के विषय में इसी बात को लिखते हैं। कहते हैं, वे सच्चाई के प्रति कान बंद कर देंगे और कल्पित कथाओं के पीछे दौड़ेंगे, परंतु तुम सब बातों में संतुलित बने रहो, धैर्य से कष्ट सहो, सुसमाचार के प्रचार में लगे रहो और अपने सेवा कार्य के सब कर्तव्य पूरे करते जाओ।
वही धन्य जिसके की अपराध सारे क्षमा हो गए पाप के पुंज सारे, वही धन्य जिसके की अपराध सारे क्षमा हो गए पाप के पुंज सारे।
और अब आइए सूक्ति ग्रंथ के 24वें अध्याय के अंतिम पदों पर दृष्टिपात करें। इस अध्याय के 23 से लेकर 29 तक के पदों में ज्ञानियों की कुछ और सूक्तियों का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार हैं। निर्णय देते समय पक्षपात उचित नहीं है। जो दोषी से यह कहता है कि तुम निर्दोष हो, उसे जनता अभिशाप देगी और राष्ट्र उसकी निंदा करेगा जो दोषी को दंड देंगे, उसे सुख शांति मिलेगी, उन्हें आशीर्वाद और समृद्धि प्राप्त होगी। जो निष्कपट उत्तर देता, वह मानो होठों का चुंबन करता है। तुम पहले बाहर और खेत का काम पूरा करो, बाद में अपना घर बनाओ। तुम अकारण अपने पड़ोसी के विरुद्ध साक्ष्य मत दो, अपने मुख से किसी को धोखा मत दो। यह मत कहो, उसने मेरे साथ जो किया उसके साथ मैं वही करूंगा, मैं प्रत्येक को उसके कर्मों का बदला चुकाऊंगा। इन पदों को श्रोताओं, ज्ञानियों की सूक्तियां निरूपित किया गया है, जो कि उचित भी है। जाने अनजाने में हम वही कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और ऐसी स्थिति में सूक्ति ग्रंथ द्वारा इन बातों का स्मरण कराया जाना सभी के लिए हितकर हो सकता है। वस्तुतः उक्त पदों में ज्ञानियों, न्यायकर्ताओं और राजाओं को पाठ सिखाया गया है, क्योंकि ये लोग ही अन्यों पर निर्णय देते हैं। ये लोग ही किसी को दोषी अथवा निर्दोष ठहराने के लिए जिम्मेदार होते हैं। प्रजा का कार्य होता है राजा और अधिकारी की बात मानना। उसी प्रकार राजा, शासक, न्यायकर्ता या अधिकारी का दायित्व होता है कि वह सच्चाई पूर्वक शासन करे तथा किसी के साथ भी अन्याय न करे। उन्हें हमेशा किसी मामले के गुण दोषों को तौलना चाहिए और संबंधित पक्षों के प्रति किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होना चाहिए। निर्णय लेते समय किसी का पक्षपात करना कभी अच्छा नहीं हो सकता। इसका परिणाम न्याय को विकृत करना और कानून तथा समानता के नाम पर गलत काम करना है। एक अच्छा न्यायाधीश सच्चाई को जानता है। वह किसी का चेहरा देखकर उसका न्याय नहीं करेगा, बल्कि सत्य के आधार पर अपना फैसला देगा। फिर न्यायासन पर बैठने वालों का दायित्व है कि वे दुष्ट लोगों को उनके दुष्ट कार्यों में कभी भी सहयोग नहीं दें अथवा प्रोत्साहित न करें। न्यायाधीशों और मंत्रियों को ईमानदारी से व्यवहार करना चाहिए और दुष्ट व्यक्ति को, चाहे वह कितना भी बड़ा आदमी या कोई खास दोस्त क्यों न हो, उसकी दुष्टता के लिए दोषी ठहराना चाहिए। उसे दिखाना चाहिए कि इसका अंत क्या होगा। इसके विपरीत, यदि वे लोग जिनका काम लोगों को उनके अपराधों के लिए दंडित करना है, उन्हें माफ कर देते हैं और उनके साथ सहयोग करते हैं, तो सूक्ति ग्रंथ के लेखक के अनुसार वे सार्वजनिक शांति और कल्याण के दुश्मन रूप में देखे जाएंगे और सारे राष्ट्र और समाज के लिए लज्जा का कारण बनेंगे। इससे भी अधिक, वे अपने दायित्वों के प्रति विश्वासघाती कहलाएंगे। श्रोताओं, न्यायाधीश हो, मंत्री हो या फिर सामान्य व्यक्ति, सभी में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वह दुष्ट को फटकार बता सके, उसे डांट सके और सीधे रास्ते पर आने के लिए प्रेरित कर सके। उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह दुष्ट को उसके बुरे कर्मों के लिए शर्मिंदा कर सके, तभी वह अपने सीने में सुख का अनुभव कर पाएगा। जब उसका विवेक उसकी गवाही देगा कि वे ईश्वर के गवाह रहे हैं, तो वे प्रसन्न होंगे और ईश्वर के आशीर्वाद का पात्र बनेंगे। वे धर्म के संरक्षक और देशभक्त कहलाएंगे। सुलेमान 28वें अध्याय की 23वीं सूक्ति में इसी बात को दोहराते हैं कि चापलूसी करने वाले की अपेक्षा डांटने वाला कृपा पात्र बनता है। श्रोताओ, कानून के अनुसार मामले की सही सुनवाई करने वाले को ही लोगों का सम्मान, प्यार, मन में सुख शांति, आशीर्वाद और समृद्धि प्राप्त होती है।
वही धन्य जिसके की अपराध सारे क्षमा हो गए पाप के पुंज सारे। वही धन्य जिसके की अपराध सारे क्षमा हो गए पाप के पुंज सारे। नहीं नाथ ने दोष जिसको लगाया, सुखी वो कि जिसको ना छल छंद भाया। वही धन्य जिसके की अपराध सारे क्षमा हो गए पाप के पुंज सारे।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। विश्व शांति के गंभीर रूप से खतरे में पड़ने के साथ मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि सभी लोग संघर्षों को हल करने और सद्भाव को बहाल करने की उम्मीद में ओलंपिक युद्ध संधि का सम्मान करेंगे। ईश्वर सत्ता में बैठे लोगों की अंतरात्मा को प्रबुद्ध करें, यह बात संत पापा फ्रांसिस ने कही है और पेरिस में 26 जुलाई को शुरू हो रहे ओलंपिक खेल के लिए अपना समर्थन दिया है। पेरिस में 26 जुलाई से शुरू हो रहे ओलंपिक खेल के प्रतिभागियों को वैटिकन एथलेटिक्स ने एक खुला पत्र लिखते हुए आह्वान किया है कि खेल की लोकप्रियता और सभी के लिए समझने योग्य भाषा के माध्यम से वे अधिक भाईचारापूर्ण मानवता को संभव बनाने में सहयोग दें। 24 जुलाई को प्रकाशित पत्र में ओलंपिक के खिलाड़ियों को संबोधित किया गया है। पत्र में लिखा है, शुक्रवार 26 जुलाई को पेरिस में ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह होगा, जिसमें विश्व स्तर पर युद्धों, तनावों और अन्याय से निपटना होगा, तब भी जब सुर्खियां बंद हों। ओलंपिक के प्रस्ताव जिसको पोप फ्रांसिस ने अपना समर्थन दिया है, प्रतियोगिता में एथलेटिका वतिकाना और शरणार्थी टीम की भागीदारी शांति के लिए दो प्रस्ताव है, जिन्हें हम सभी एक बड़े खेल परिवार के रूप में मानवता के लिए एक अंधेरे समय में एक बार फिर जारी कर रहे हैं। ओलंपिक सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण कहानी उन महिलाओं और पुरुषों की है जो आज तीसरे विश्व युद्ध को रोकने में असमर्थ हैं, लेकिन खेल की भाषा के माध्यम से जो सभी के लिए लोकप्रिय और समझने योग्य है, अधिक भाईचारे वाली मानवता की संभावना का सुझाव देते हैं। पापुआ न्यू गिनी के लोग प्रार्थना, चिंतन एवं विचार विमर्श के द्वारा देश में संत पापा फ्रांसिस की आगामी प्रेरितिक यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। पापुआ न्यू गिनी में अपनी प्रेरितिक यात्रा में पोप फ्रांसिस करीब 48 घंटे रुकेंगे, फिर भी कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जैसे गवर्नर जनरल एवं प्रधानमंत्री से मुलाकात, सरकारी अधिकारियों, नागरिक समाज और राजनयिक कोर के साथ बैठक, कारितास द्वारा संचालित स्कूल के बच्चों से मुलाकात, वहां के धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म सामाजों, धर्म बहनों, सेमिनरियों और प्रचारकों से भी उनकी मुलाकात होगी और अंत में वे पापुआ न्यू गिनी में अपनी प्रेरितिक यात्रा का समापन पौत्र मिस्सा बलिदान से करेंगे। विदेश एजेंसी के अनुसार इस ऐतिहासिक घटना का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। पापुआ न्यू गिनी की यात्रा पोप जॉन पॉल द्वितीय ने 1995 में की थी। पोप फ्रांसिस को 4 साल पहले वहां जाना था, लेकिन महामारी ने सब कुछ अवरुद्ध कर दिया। पापुआ न्यू गिनी में परमधम पीठ मिशन सोसाइटी के राष्ट्रीय निदेशक एवं दिव्य वचन को समर्पित सोसाइटी के भारतीय मिशनरी फादर विक्टर रॉक ने फिदेस न्यूज को बतलाते हुए कहा, लोग उत्सुक हैं और अधिक जानना चाहते हैं, लेकिन विश्वासियों को तैयार करने के लिए पुरोहितों को भी मिलना होगा, चिंतन करना और आध्यात्मिक रूप से तैयार होना होगा। यही कारण है कि पोर्ट मोरेस्बे में पुरोहितों की आध्यात्मिक साधना हुई, जिसका संचालन पोर्ट मोरेस्बे के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल जॉन रिबात ने की और बोगनविले के बिशप ने आध्यात्मिक साधना में प्रवचन दिया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पापुआ न्यू गिनी में शहरों में रहने वाले लोगों की आबादी बहुत कम है। द्वीप में शहरीकरण की दर 2.51% है और आबादी का एक बड़ा हिस्सा निरक्षर है, जिससे पुरोहितों का प्रशिक्षण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कलीसिया की 2021 सांख्यिकीय वार्षिक पुस्तिका के अनुसार पूरे देश में कुल 304 धर्म प्रांतीय एवं 295 धर्म सामाजिक पुरोहित हैं। संयुक्त राष्ट्र के बाल कोष यूनिसेफ द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट से पता चलता है कि 2021 में अत्यधिक तापमान के कारण सिर्फ यूरोप और मध्य एशिया में लगभग 400 बच्चे मारे गए, क्योंकि बढ़ते तापमान ने सबसे कम उम्र और सबसे कमजोर लोगों के जीवन को खतरे में डाल दिया है। यूनिसेफ की यूरोप और मध्य एशिया की क्षेत्रीय निदेशक रेजिना दी डोमेनिसिस ने चेतावनी दी है कि यूरोप और मध्य एशिया में लगभग आधे बच्चे पहले से ही लगातार गर्मी की लहरों के संपर्क में हैं। ऐसे क्षेत्र में जहां तापमान वार्षिक स्तर पर सबसे तेज गति से बढ़ रहा है, उन्होंने चेतावनी दी कि बढ़ते तापमान से बच्चों, खासकर सबसे छोटे बच्चों के लिए थोड़े समय में ही गंभीर स्वास्थ्य जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। बिना देखभाल के ये जटिलताएं जीवन के लिए खतरा बन सकती हैं। यूनिसेफ के अनुसार गर्मी के संपर्क में आने से बच्चों पर उनके जन्म से पहले ही गंभीर प्रभाव पड़ता है और इसके परिणाम स्वरूप समय से पहले जन्म, कम वजन, मृत जन्म, जन्मजात विकलांगताएं हो सकती हैं। इस वास्तविकता को देखते हुए यूनिसेफ ने यूरोप और मध्य एशिया की सरकारों से आग्रह किया है कि वे तेज गर्मी के प्रभाव को कम करने की रणनीतियां अपनाएं। बच्चों में गर्मी से संबंधित बीमारियों पर ध्यान देने के लिए गर्मी स्वास्थ्य कार्य योजना बनाएं और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में निवेश करें। रांची के महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आइंद ने 25 जुलाई को वैटिकन के प्रेरितिक राजदूत माननीय महाधर्माध्यक्ष लियोपोल्डो जिरेली के कर कमलों से पोप द्वारा महाधर्माध्यक्ष को प्रदत्त अधिकार का प्रतीक चिन्ह पालियम ग्रहण किया। पालियम आरोपण की धर्म विधि बृहस्पतिवार को सुबह 6:15 पौत्र क्रिस्त्याग के साथ रांची के संत मरिया महागिरजा घर में सम्पन्न हुई। कार्तिक कलीसिया में नवनियुक्त महाधर्माध्यक्षों को पालियम आरोपित किए जाने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। इसे पोप के हाथों से प्रदान किया जाता है, किंतु पोप फ्रांसिस ने इसका अधिकार अपने प्रतिनिधि भारत एवं नेपाल के प्रेरितिक राजदूत माननीय महाधर्माध्यक्ष लियोपोल्डो जिरेली को प्रदान किया है। प्रेरितिक राजदूत जिरेली ने कहा, पालियम का अर्थ है महाधर्माध्यक्ष की संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी के साथ एकता और अपने रेवर की देखभाल करना जो उन्हें पोप फ्रांसिस द्वारा सौंपी गई है। यह सफेद मेमने के ऊन से बना 2 इंच चौड़ा, 12 इंच लंबा और घुमावदार आवरण है, जिसका प्रयोग संत पापा फ्रांसिस किसी भी यूखरिस्ट समारोह के दौरान और महाधर्माध्यक्ष विशेष अवसर एवं त्योहारों के दौरान करते हैं। पोप के प्रतिनिधि ने कहा, पालियम मेमने के ऊन से बना है, ईश्वर के मेमने ख्रिस्त, जिन्होंने हमारे पापों को हर लिया और जो भले चरवाहे के रूप में अपनी भेड़ों की देखभाल करते हैं। उन्होंने रांची के महाधर्माध्यक्ष विंसेंट आइंद को प्रोत्साहित किया कि वे अपनी भेड़ों की अच्छी देखभाल करें एवं रांची महाधर्म प्रांत के धर्माध्यक्षों के साथ मिलकर अपने प्रेरित कार्यों को आगे बढ़ाएं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।